हाँ, हम लोग अर्थापत्ति प्रमाण के संबंध में अभी पढ़ रहे हैं। चलिए ग्रंथ में जो लिखा है पढ़ते हैं उसको। ननु अर्थापत्ति ही पृथक प्रमाणम अस्ति। अर्थापत्ति प्रमाण मानने वाले जो मीमांसा दर्शन वाले हैं, वेदांत दर्शन वाले हैं, उनका कहना है कि अर्थापत्ति जो है यह पृथक प्रमाण है। पृथक प्रमाण है अर्थात प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, इन चार के अलावे ये पांचवा प्रमाण है, ऐसा जो है मीमांसा और वेदांत वाले कहते हैं। अब अर्थापत्ति प्रमाण है क्या, उसका स्वरूप क्या है, अर्थापत्ति किसे कहते हैं, तो उसको बताते हैं कि इसको। लेकिन बताने से पहले मैं दो शब्दों को बताना चाहता हूँ। एक है उपपद्यमान और एक है उपपादक। मैंने क्या शब्द बोला? उपपद्यमान और उपपादक। उपपद्यमान मतलब होता है कि संभव होने वाला, इसको कहते हैं उपपद्यमान। और उपपादक, उपपादक कहते हैं संभव करने वाला। तो उपपद्यमान और उपपादक। उपपद्यमान जो है वह जो है वह प्रमाण, वही प्रमाण कहलाता है अर्थापत्ति प्रमाण। और उपपादक जो है वह अर्थापत्ति प्रमा कहलाता है। ये ध्यान रखिएगा, ये बड़ा गूढ़ बात है जो कि मैंने बहुत ही छोटे से शब्द में आपको बताया है। उपपद्यमान और उपपादक। उपपद्यमान जो होगा वह प्रमाण कहलाएगा, ठीक है। ये जो है ना, यहाँ उपपद्यमान, अच्छा चलिए, मैं अनुपपद्यमान मुझे समझाना था, इसको समझाने के लिए मैंने पहले उपपद्यमान कह दिया, तो अब अनुपपद्यमान समझ जाएंगे। चल, मैंने ये कहा था कि जो संभव होने वाला हो, माने जो उत्पन्न होने वाला हो, संभव होने वाला हो, वह हो गया उपपद्यमान। और जो संभव न होने वाला हो वह क्या हो जाएगा? अनुपपद्यमान। क्लियर? जो संभव होने वाला हो वह है उपपद्यमान, जो संभव न होने वाला है वह है अनुपपद्यमान। तो जो अनुपपद्यमान होता है वही अर्थापत्ति प्रमाण कहलाता है, ठीक। और जो उपपादक होता है, माने अनुपपद्यमान को उपपन्न करता है, असंभाव्यमान को संभव करता है, अनुत्पद्यमान को जो उत्पन्न करता है वही है उपपादक। और वह जो उपपादक होता है वह है अर्थापत्ति प्रमाण। तो यहाँ पर जो अर्थापत्ति का परिचय दे रहे हैं केशव मिश्र तर्क भाषा में, उसमें दोनों बातों का समावेश करके ये बता रहे हैं। तो देखिए क्या कहते हैं, अनुपपद्यमान अर्थ दर्शनात्। अनुपपद्यमान अर्थ के दर्शन होने के बाद, अनुपपद्यमान अर्थ का दर्शन मतलब ज्ञान, तो अनुपपद्यमान अर्थ का पहले ज्ञान होगा। अनुपपद्यमान अर्थ क्या है? माने जो संभव होने वाला अर्थ न हो, जो उपपन्न होने वाला अर्थ न हो, जो सिद्ध होने वाला अर्थ न हो, वह हो गया अनुपपद्यमान अर्थ। तो अनुपपद्यमान अर्थ का जब दर्शन होता है, ज्ञान होता है, उसके बाद तत् उपपाद की भूत अर्थांतर कल्पनम अर्थापत्ति। तो अनुपपद्यमान अर्थ होने अर्थ का ज्ञान होने के बाद तत् तत् माने अनुपपद्यमान अर्थ। तो अनुपपद्यमान अर्थ का उपपाद की भूत जो अर्थांतर कल्पन है, माने अनुपपद्यमान अर्थ को संभव करने वाला जो अर्थांतर की कल्पना है, उस कल्पना का नाम है अर्थापत्ति। ऐसा जो इसमें समझ में आएगा आएगा, नहीं तो उदाहरण पर सारा समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं एक बार इसका अर्थ बताता हूँ कि अनुपपद्यमान अर्थ के दर्शन होने के बाद, ज्ञान होने के बाद, अनुपपद्यमान अर्थ को उपपन्न करने के लिए, अनुपपद्यमान अर्थ को सिद्ध करने के लिए, या अनुपपद्यमान अर्थ को संभव करने के लिए जो अर्थांतर की कल्पना की जाती है, उसी अर्थांतर की कल्पना का नाम है अर्थापत्ति। अब यहाँ देखिए दोनों चीजें आ गई ना, ये जो अर्थापत्ति लास्ट में बताया ये है प्रमा, और वो जो कहा ना अनुपपद्यमान अर्थ दर्शनात्, उसमें पंचमी है, हेतु अर्थ में है, कारण अर्थ में है। तो यह जो है ना, यह है अर्थापत्ति प्रमाण। तो अर्थापत्ति प्रमाण को का ज्ञान होने से क्या होता है, अर्थापत्ति प्रमा होती है। वही कह रहा कि अनुपपद्यमान अर्थ दर्शनात्, माने अनुपपद्यमान अर्थ का ज्ञान होने से अर्थात अर्थापत्ति प्रमाण का ज्ञान होने से क्या होता है, तो तत् उपपाद की भूत अर्थांतर कल्पन होता है। माने अनुपपद्यमान अर्थ को संभव करने वाला जो अर्थांतर है, अन्य अर्थ है, उसकी जो कल्पना होती है वह अर्थापत्ति प्रमा होती है। इस तरह से इन्होंने बताया। अब उदाहरण पर इनको समझा रहे हैं। तथा ही पीनो देवदत्तो दीवान भुंगते, पीना माने स्थूला मोटा, देवदत्त जो है वह दिवा न भुंगते, दिवा माने दिन में न भुंगते माने न खा देती, स्थूल जो देवदत्त है वह दिन में नहीं खाता है। इति वाक्य दृष्टे श्रुते, इस वाक्य को किसी ने सुना इसलिए कहा श्रुते, या इति दृष्टे, या फिर ऐसा देखा, देखा कि देवदत्त जो है बहुत ही मोटा तगड़ा है और दिन में तो खा ही नहीं रहा है। तो इस तरह से या तो दिखाई पड़े या फिर कोई बोले कि पीनो देवदत्तो दीवान भुंगते, इस तरह से कोई सुनाई दे, तो दिखाई दे या सुनाई दे। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होगा कि ये कैसे संभव होगा बताइए, कि दिन में खाएगा नहीं और वह मोटा भी रहेगा। तो दिन में खाएगा नहीं और वह मोटा रहेगा, ये तभी संभव है जब रात्रि भोजन वह करेगा। लेकिन दिन की तरह अगर रात में भी न खावे तो वह कभी मोटा हो सकता है, वो तो मर ही जाएगा, मोटा होने की बात तो दूर है। तो यहाँ पर पीनो देवदत्तो दीवान भुंगते में देखिए अनुपपद्यमान अर्थ क्या है। तो देवदत्त का जो पीनत्व है, देवदत्त का जो मोटापन है, वह अनुपपद्यमान अर्थ है, वह संभव नहीं होने वाला अर्थ है। क्यों नहीं संभव होने वाला अर्थ है, क्योंकि आगे है दीवान भुंगते, दिन में खाता ही नहीं है और रात में खाने की बात न देखी गई है न सुनी गई है। तो इस तरह से देवदत्त में पीनत्व जो है वह अनुपपद्यमान है, संभव नहीं होने वाला है। उसको संभव करने वाला तत् उपपाद की भूत, उसको संभव करने वाला अर्थांतर कल्पन किया जाता है। अर्थांतर कल्पन यहाँ पर क्या है, रात्रि भोजन कल्पन। तो अनुपपद्यमान अर्थ हो गया देवदत्त का पीनत्व, उसका उपपन्न करने वाला, उस पीनत्व को संभव करने वाला अर्थांतर कल्पन किया जाता है, माने रात्रि भोजन की कल्पना की जाती है। यही जो रात्रि भोजन की कल्पना है, अर्थांतर कल्पना, यही अर्थापत्ति प्रमा है। और अर्थापत्ति प्रमाण क्या है, तो वो जो अनुपपद्यमान अर्थ है देवदत्त का पीनत्व, वह अगर सुनाई देता है या दिखाई देता है तो वह है अर्थापत्ति प्रमाण। वही आगे फिर व्याख्या में स्वयं कह रहे हैं कि दिवा माने दिन में अभुंजानस्य, भुंजान माने खाने वाले, अभुंजान माने नहीं खाने वाले। तो दिन में नहीं खाने वाला जो देवदत्त है उसमें पीनत्वम, उसमें जो पीनत्व आएगा वो रात्रि भोजनम अंतरेन न उपपद्यते, अंतरेन माने बिना, माने रात्रि भोजन के बिना न उपपद्यते माने न संभवति, रात्रि भोजन के बिना दिवा अभुंजान जो है व्यक्ति उसमें पीनत्व संभव नहीं है। अतः पीनत्व अन्यथा अनुपपत्ति सूत अर्थापत्ति एव रात्रि भोजने प्रमाणम, इसीलिए पीनत्व में पीनत्व की जो पीनत्व की अन्यथा उपपत्ति नहीं हो सकती, माने बिना रात्रि भोजन के जो है पीनत्व संभव नहीं हो सकता, इसीलिए वहाँ पर अर्थापत्ति की जाती है, माने अर्थांतर की कल्पना की जाती है, रात्रि भोजन की कल्पना की जाती है। तो इस तरह से वह जो पीनत्व है वही पीनत्व जो है वहाँ पर प्रमाण है, अर्थापत्ति प्रमाण है। अब शब्द को देखिए, पीनत्व जो है, पीनत्व माने स्थूल, माने स्थूल स्थूलता, उस स्थूलता का अन्यथा अनुपपत्ति सूत, अन्यथा माने बिना किसी अन्य उपाय के जो अनुपपत्ति है माने असिद्धि है, असंभवता है, उस असंभवता से सूत माने जन्य, उस असंभवता से उत्पन्न जो अर्थापत्ति है वही अर्थापत्ति एव रात्रि भोजने प्रमाणम, वह अर्थापत्ति जो है वही रात्रि भोजन के रूप में, रात्रि भोजन रूप प्रमा का जनक होता है। कौन? वह पीनत्व जो है वह। तच्च प्रत्यक्षादिभ्यो भिन्नम। यह जो अर्थापत्ति प्रमाण है, माने जैसे देवदत्त का यहाँ पर पीनत्व जो है वह अर्थापत्ति प्रमाण है, वही अनुपपद्यमान अर्थ है, वह प्रत्यक्षादिभ्यो भिन्नम, वह प्रत्यक्षादि प्रमाण से भिन्न है। और रात्रि भोजन से प्रत्यक्षादि अभिषेयत्वात्, क्योंकि वह रात्रि भोजन जो अर्थ है वह प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय नहीं है। तो जब प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय नहीं है तो यह पृथक प्रमाण के रूप में मानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। पीनो देवदत्तो दीवान भुंगते, अगर इस वाक्य को सुनते हैं अथवा पीनो देवदत्तो दीवान भुंगते ये बात देखते हैं तो फिर वहाँ पर रात्रि भोजन की कल्पना जो है की जाती है। यह जो कल्पना है बिना अर्थापत्ति प्रमाण के संभव नहीं है, प्रत्यक्ष उपमान अनुमान शब्द के द्वारा संभव नहीं है, इसलिए अर्थापत्ति ही पृथक प्रमाणम अस्ति, ऐसा पूर्व पक्षियों ने कहा। उसका खंडन करते हैं कि नहीं तथ्य, ताकि ये सही बात नहीं है, क्योंकि रात्रि भोजन से अनुमान विषयत्वात्, रात्रि भोजन जिसको आपने अर्थापत्ति प्रमा माना है यह तो अनुमान का विषय है, अर्थात ये तो अनुमान से इस तरह की अनुमिति हो जाएगी। कैसे अनुमिति होगी, माने अनुमान प्रमाण के अंतर्गत जो है अर्थापत्ति प्रमाण आ जाएगा, अलग से मानने की जरूरत नहीं है। अब ये रात्रि भोजन जो है, इन्होंने कहा था ना कि ये प्रत्यक्षादि का अविषय है, तो उसी को कह रहे हैं कि नहीं, ये अनुमान का प्रमाण का ये विषय बन सकता है, बनता है। कैसे, तथा ही अयम देवदत्तो रात्रौ भुंगते, यह देवदत्त जो है वह रात में भोजन खाता है। दिवा अभुंजानत्वे सति, क्योंकि ये दिन में खाता नहीं है और पीनत्वात्, और उसमें पीनत्व भी है। यस्तु न रात्रौ भुंगते, जो रात में नहीं खाता है, न असौ, वह व्यक्ति दिवा अभुंजानत्वे सति पीनः, न पीनः, वह जो है जो रात में नहीं खाता है वह, और जो दिन में नहीं खाता है और रात में भी नहीं खाता है, वह कभी भी पीन नहीं होता है। यथा दिवा रात्रो अभुंजान अपीना, जैसे दिवा में और रात्रि में अभुंजान मन नहीं खाने वाला व्यक्ति अपीन होता है। न चायम तथा, ये वैसा नहीं है, मतलब पीन है, तस्मान न तथा, इसीलिए वह वैसा नहीं है, अर्थात रात्रि भोजन से हीन व्यक्ति वह नहीं है, रात्रि भोजन करता ही करता है। इति केवल व्यतिरेकी अनुमाने ने वह, इस तरह से केवल व्यतिरेकी अनुमान प्रमाण के द्वारा रात्रि भोजन से प्रतीयमानत्वात्, रात्रि भोजन जो है यहाँ पर प्रतीयमान है, रात्रि भोजन जो है इस अर्थ का लाभ हो रहा है। किम अर्थापत्ति ही पृथक्त्वेन कल्पनीया, फिर अर्थापत्ति प्रमाण को पृथक रूप से क्यों कल्पना करें, क्यों स्वीकार करें, इस तरह से ये बात कह करके न्याय दर्शन वालों ने खंडन कर दिया। कहा कि ये अनुमान प्रमाण का विषय है, इसके लिए अर्थापत्य प्रमाण मानने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर इन्होंने केवल व्यतिरेकी अनुमान ऐसा बोला, तो आप पीछे पढ़ चुके हैं अन्वय व्यतिरेकी अनुमान, केवल व्यतिरेकी अनुमान। तो यहाँ जो केवल व्यतिरेकी अनुमान कहा गया है इसके बारे में थोड़ा मैं बताता हूँ, और अनुमान का जो यहाँ प्रयोग किया गया है इसमें कौन पक्ष है, कौन साध्य है, कौन हेतु है, ये सारी बातें मैं बता रहा हूँ। इसमें देवदत्त जो है वह पक्ष है, कहता है ना अयम देवदत्तो, तो अयम देवदत्ता, यह जो कहा गया ना इसमें देवदत्त पक्ष है, और रात्रि भोजन जो है साध्य है, क्योंकि देवदत्त में रात्रि भोजन को हमें सिद्ध करना है तो देवदत्त पक्ष है, रात्रि भोजन साध्य है, और हेतु क्या है, तो दिन भोजन अभाव विशिष्ट पीनत्व जो है, या दिवा भोजन अभाव विशिष्ट पीनत्व जो है वही इसमें हेतु का काम करेगा। आप पंचावयव वाक्य जो होता है उसमें यही तीन मुख्य होते हैं, पक्ष, साध्य और हेतु। तो पक्ष हो गया यहाँ पर देवदत्त, साध्य हो गया रात्रि भोजन, हेतु हो गया दिन दिवा भोजना भाव विशिष्ट पीनत्व। अब यहाँ पर जो है ना व्यतिरेक व्याप्ति का ज्ञान कैसे है वो देखिए, कि दिन में भोजन करने वाले मनुष्य का पीनत्व रात्रि भोजन के बिना अनुपपन्न है, यह ज्ञान व्यतिरेक व्याप्ति का ज्ञान है, क्योंकि साध्याभाव में साधनाभाव की व्याप्ति ही व्यतिरेक व्याप्ति कही जाती है। ध्यान से सुनिए, ये मैं पहले भी सिखा चुका हूँ, साध्याभाव में साधनाभाव की अगर व्याप्ति हो तो उस व्याप्ति को हम व्यतिरेक व्याप्ति कहते हैं। और यह व्यतिरेक व्याप्ति यहाँ पर है कैसे, क्योंकि रात्रि भोजन रूप जो है साध्य है उसके अभाव में दिन भोजनाभाव विशिष्ट पीनत्व रूप जो हेतु है वह उसका अभाव है ही। जहाँ पर रात्रि भोजन नहीं होगा वहाँ पर दिन भोजनाभाव विशिष्ट पीनत्व जो है वह भी नहीं होगा। इस तरह से साध्याभाव स्थल में साधनाभाव है तो रात्रि भोजन रूप साध्य के अभाव में दिन भोजनाभाव विशिष्ट पीनत्व रूप हेतु का अभाव है, अर्थात साध्याभाव में साधनाभाव की व्याप्ति है। अतः स्पष्ट है कि जो रात में भोजन नहीं करता वह दिन में भोजन न करते हुए पीन नहीं हो सकता। तो इस प्रकार उक्त कल्पना का साधन भूत जो ज्ञान है, जब रात्रि भोजन रूप साध्य की व्यतिरेक व्याप्ति से विशिष्ट दिन भोजनाभाव विशिष्ट पीनत्व रूप हेतु के परामर्श रूप में सुलभ है, तब उक्त कल्पना को अनुमिति मानने में कोई बाधा न होने से अर्थापत्ति नामक अतिरिक्त प्रमाण की कल्पना सर्वथा युक्तिहीन है। इस तरह से केवल व्यतिरेकी अनुमान के द्वारा यहाँ पर रात्रि भोजन अर्थ जो है सिद्ध हो रहा है, इसके लिए अर्थापत्ति प्रमाण को पृथक प्रमाण मानने की आवश्यकता नहीं है। अब इस सेशन का लास्ट पाठ बचा है, वह थोड़ा कठिन है, फिर भी मैं पढ़ा दूंगा, जितना समझ में आता है वो अच्छी बात है, नहीं आए तो भी अच्छी बात है, क्योंकि वो बहुत उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन शास्त्र है, उसको समझने की चेष्टा जरूर करनी चाहिए, तो उसको मैं अगले पाठ में पढ़ाऊंगा।